पृष्ठ संख्या 61, अध्याय 4 का शेष 20वां वाक्य घुमड़ घुमड़ कर प्रमिला के मन में उठे, उसकी जवान तक आए, मगर वह फिर से आत्मविश्वास खो बैठी। पहले की तरह वह मन की बात निसंकोच कह देने में असमर्थ अनुभव करने लगी थी। वह चुपचाप खड़ी महेंद्र के मुंह की ओर ताकती रही। महेंद्र खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। प्रमिला सहसा थकी थकी सी महसूस करने लगी। उसके सारे शरीर में एक प्रकार की अलसाहट भर गई, जैसे सहसा ही शरीर के सब बंध टूटने लगे हों। उसे लगा जैसे फिर से उसके अंदर वह धीमी सी आँच जलने लगी है, जो कुछ दिनों से दिन रात जलती रही थी। कोई घुन जैसे फिर से उसे अंदर ही अंदर से चाटने लगा है। पर घर के कामों से छुट्टी तो नहीं पाई जा सकती थी। मेज पर से बर्तन समेट कर वह पप्पू की खोज में नीचे उतरी। पप्पू पड़ोस के लड़कों के साथ लुक्का छिप्पी खेल रहा था। माँ ने बुलाया तो भाग गया। माँ ने लपक कर पकड़ा तो माँ को लाते जमाने लगा। पप्पू पहले ऐसा नहीं करता था, चुपचाप बात मान जाया करता था। अब की बार माँ ने भी दो थप्पड़ रसीद कर दिए। वह अजीब तरह से आंखें मिचकाता माँ की ओर देखने लगा। माँ उसे बच्चों से छुड़ा कर घर खींच लाई। ऐसे मौक़ों पर प्रमिला खाना नहीं खाया करती थी। पप्पू को खाना खिलाने के बाद उसने रोज की तरह पप्पू को खाट पर सुला दिया और चुपचाप रसोई घर में जाकर बैठ गई। पर कान उसके महेंद्र के कमरे की ओर लगे रहे। महेंद्र के कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन प्रमिला का मन आशंकित था। बिना कुछ सुने ही उसके कान खड़े हो जाते। महेंद्र का कमरा बहुत ही अरास्ता था, गिनी चुनी चीज़ें पर सभी अपनी अपनी जगह पर। इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने वाला आदमी अपने विचारों में इतना उलझा हुआ हो सकता है? उसके मन में इतने गुम्फल हो सकते हैं? सतवंत ने एक बार उसके कमरे के अंदर झांक कर कहा था। सतवंत को कमरे के अंदर झांकते हुए भी डर लगने लगा था। तभी प्रमिला को लगा जैसे उसे अलमारी खुलने की आवाज़ हुई है। यह अलमारी क्यों खोल रहा है? खाना खाने के बाद तो वह कोई किताब उठाकर पृष्ठ संख्या लेट जाता है और पढ़ते पढ़ते सो जाया करता है। अलमारी में ऊपर वाले खाने में कपड़ों के नीचे कफलिंक्स की वह जोड़ी रखी थी जो सुषमा ने महेंद्र को भेंट की थी। प्रमिला उसे देख चुकी थी। प्रमिला हर रोज मौका पाकर महेंद्र की अलमारी में झांकती रहती थी, उसकी जेबों में हाथ डालती, उसके बटुए को खोल खोल कर देखती रहती थी। यह जानते हुए भी कि महेंद्र को पता चल गया तो घर में कांड खड़ा होगा, महेंद्र उस पर हाथ उठाएगा, बुरा भला कहेगा। लेकिन ऐसा करना उसके बस की बात नहीं रह गया था। अलमारी बंद करने की आवाज़ आई। महेंद्र ने जरूर पहनने के लिए कपड़े निकाले होंगे। वह जरूर कहीं बाहर जा रहा होगा। बाहर जाने से पहले महेंद्र अलमारी में से पहनने के कपड़े, सूट और कमीज और मोजे और रुमाल तक सभी निकाल कर पलंग पर बिछा दिया करता था और फिर कुर्सी पर बैठकर आराम से कपड़े बदला करता था। क्या आज वह फिर सुषमा के पास जा रहा है? प्रमिला का दिल धक धक करने लगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बैठे बैठे प्रमिला ने हाथ जोड़ दिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो करता है करे, जहाँ जाना चाहता है जाए। पर उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इतवार के दिन इस वक्त वह रसोई घर में बैठकर बर्तन मला करती थी। किसी जमाने में साथ साथ गुनगुनाया भी करती थी, क्योंकि इतवार के दिन माई की छुट्टी हुआ करती थी। पर आज प्रमिला को काम की सुध-बुध ही नहीं रही। उसके हाथ पैर जैसे फूलने लगे थे। इतनी ज़्यादा घबराहट उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे फिर से अलमारी खोलने और बंद करने की आवाज़ आई और उसके शीघ्र ही बाद उसे महेंद्र के कदमों की आहट मिली और फिर ग्रे रंग की पतलून के पाइंचे और नीचे चमचमाते ब्राउन बूट नजर आए। महेंद्र सचमुच बाहर जा रहा था। ऊपर ट्वीट का कोट पहने हुए था। कोट के ऊपर प्रमिला की नज़र नहीं जा पाई। वहीं बैठे बैठे वह उसे देखती रही। रसोई घर में से बैठक का बहुत सा भाग नज़र आता था। सोफा कुर्सियों के बीच बिछे लाल कालीन का बहुत सा हिस्सा और सीढ़ियों को जाने वाला दरवाज़ा तक नज़र आते थे। बैठक में आकर महेंद्र सीढ़ियों के दरवाजे की ओर घूम गया था। तभी सहसा प्रमिला उठ खड़ी हुई और तड़प कर बोली, तुम जा रहे हो? महेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ता गया। प्रमिला से नहीं रहा गया। सभी प्राण और सभी इरादे उसे क्षण भर में भूल गए थे। पृष्ठ संख्या 63, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? उसने याचना भरी आवाज में कहा। महेंद्र ने मुड़कर उसकी ओर देखा, फिर अपने स्थिर बोझल आवाज में बोला, क्या तुम्हें बताना होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम सुषमा के पास जा रहे हो, मैं जानती हूँ। महेंद्र घूमकर खड़ा हो गया। जहाँ मेरा मन आएगा जाऊँगा, कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मत जाओ, प्रमिला ने कहा और लपक कर उसकी बाँह पकड़ ली। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा मुर्दा देखो, जो तुम इस घर के बाहर कदम रखो। तुमने वचन दिया था कि तुम उसके पास नहीं जाओगे। पर महेंद्र ने प्रमिला का हाथ झटक दिया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। प्रमिला सीढ़ियों के ऊपर खड़ी रही। महेंद्र बार बार सीढ़ियाँ उतरता गया। उसकी चौड़ी पीठ उत्तरोत्तर दूर होती जा रही थी। सहसा प्रमिला नंगे पांव उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगी और आधी सीढ़ियों के बाद लैंडिंग पर पहुंचकर फिर उसकी बाँह पकड़ ली। तुम जितना मनाए मुझे पीट लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। प्रमिला पागलों की तरह दोहरा दोहरा कर कहने लगी। इसका नतीजा तुम्हारे लिए बुरा होगा, महेंद्र ने फिर बोझल आवाज में कहा। फिर कड़कती सी आवाज में उसने कहा, तुमने मेरे जेब में हाथ डाला था? प्रमिला फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखने लगी, फिर बोली, हाँ डाला था, फिर भी डालूंगी, रोज डालूंगी। तुम मेरे पति हो, मैं क्यों नहीं तुम्हारे जेब में हाथ डालूं? तुम्हारा जो कुछ है सब मेरा है, उस पर मेरा हक है, मैं क्यों नहीं हाथ डालूं? मैं डालूंगी, रोज डालूंगी, डॉट डॉट। महेंद्र की नज़रों में प्रमिला और भी घृणित लगने लगी थी, जो अपने पत्नित्व का अधिकार जताना चाहती थी, जो जताना चाहती थी कि वह उसकी अपनी है। उसे लगा जैसे एक पुराना लसलसा मैला कुचैला चिथड़ा उसके शरीर से चिपका है, जिसे वह उखाड़ कर फेंक देना चाहता है, पर वह ज्यादा ही ज्यादा चिपकता जा रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में बहुत परिवर्तन आ गया था। महेंद्र में एक प्रकार की स्थिरता आ गई थी, जबकि प्रमिला अपनी सारी स्थिरता खो बैठी थी और बात बात पर शरद के झरे हुए पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती थी। पृष्ठ संख्या 64। इसका नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं कह देता हूँ, महेंद्र ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वह तुम्हारी कुछ नहीं लगती, डॉट डॉट। प्रमिला ने गिड़गिड़ाते हुए अपने पत्नित्व के अधिकार की दुहाई दी और महेंद्र को रोकने के लिए फिर अपना हाथ बढ़ाया। महेंद्र ने फिर उसका हाथ झटक दिया। तुम जितना ज्यादा गिड़गिड़ाती हो, उतना ज्यादा मुझे तुमसे नफरत होती जा रही है, उतनी ही ज्यादा मुझे बुरी लगती हो। और वह घूम कर फिर सीढ़ियाँ उतरने लगा। प्रमिला का चेहरा बहुत ही पीला पड़ गया था। वह बदहवास सी होती जा रही थी और बालों की लटें उसके गालों पर लटक आई थीं। महेंद्र सीढ़ियाँ उतर कर घर के बाहर आ गया और बाहर का आंगन पार करने लगा। इसी आंगन में पप्पू और उसके दोस्त खेला करते थे और इसी आंगन में गर्मी के दिनों में कुर्सियाँ बिछा कर महेंद्र, नाटा और उसके अन्य मित्र राजनीति पर बहसें किया करते थे। जब महेंद्र आंगन पार करके सड़क के किनारे पहुंचा, तो उसे अपने पीछे दबी दबी कराहने की सी आवाज़ सुनाई दी। प्रमिला नंगे पांव उसके पीछे पीछे भागती चली आ रही थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी सलवार के पाइचे बार बार उसके पैरों में उलझ रहे थे। महेंद्र सुन्न सा खड़ा रह गया। प्रमिला सड़क पर उसके पीछे पीछे आ जाने की धृष्टता करेगी, आसपास के लोगों को तमाशा दिखाएगी, उसे इसकी आशा नहीं थी। वह जानबूझकर सॉन्ग रच रही है मुझे बदनाम करने के लिए, उसने मन ही मन सोचा। प्रमिला गिरती पड़ती उसके पास पहुंच गई थी और फिर से हाथ बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ लिया था और उसे पीछे की ओर खींचने लगी थी। तभी महेंद्र ने देखा कि प्रमिला की आंखें ऐंची सी हो रही हैं और उसके होठ सूख रहे हैं और होठों के कोनों पर झाग सी आ गई है। मत जाओ, मत जाओ ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्रमिला एक वरदान की तरह यही शब्द बुदबुदाए जा रही थी। घर के अंदर होता तो महेंद्र एक झापड़ से उसे दुरुस्त कर देता, लेकिन वह घर से बाहर आ चुका था और दुनिया देख रही थी। फिर भी उसने अपना बाजू छुड़ाते हुए दांत पीस कर कहा, अगर यहाँ के लोगों को तमाशा दिखलाओगी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पृष्ठ संख्या 65। लौट जाओ घर के अंदर, मैं कह रहा हूँ। और महेंद्र ने फिर सड़क की ओर कदम बढ़ाया, पर प्रमिला उसके साथ साथ घिसटती हुई सी अपने बाजू से उसे पीछे की ओर खींच रही थी और बराबर बुदबुदाए जा रही थी, मत जाओ ना, मत जाओ ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, डॉट डॉट। सड़क पर एक आदमी खाकी रंग की कमीज और खाकी रंग की पतलून पहने साइकिल पर जाता हुआ रुक गया और सड़क के किनारे पटरी पर पैर रख कर इस दंपति की ओर देखने लगा। कोई गरीब दंपति होता तो पूछ सकता था कि क्या बात है, मगर महेंद्र के ड्यूटी कोट और चमचमाते जूतों को देखकर वह दूर ही ठिठका उनका तमाशा देखता रहा। महेंद्र ने सहसा घर की ओर मुड़कर देखा। ऊपर की मंजिल पर बाएं हाथ के फ्लैट में खिड़की के अधखुले पर्दे के पीछे उसे मुखर्जी की पत्नी का चेहरा हिलता सा नजर आया। वह पर्दे की ओट में खड़ी बराबर उसकी ओर देखे जा रही थी। महेंद्र ने झट से मुंह फेर लिया। सड़क के पार नानबाई और गोश्त वाले की दुकान के बीच लकड़ियों का टाल था, जहाँ से महेंद्र के घर में भी कोयला और ईंधन की लकड़ियाँ जाया करती थी। महेंद्र ने देखा टाल वाला उठ खड़ा हुआ था और इसी ओर देखे जा रहा था। हैरान था कि इतने चुपचाप रहने वाले और पढ़े लिखे परिवार में क्या हो रहा है। प्रमिला अभी भी महेंद्र को खींचे जा रही थी। महेंद्र के बाजू पर प्रमिला की उंगलियां कड़ी होती जा रही थीं, लेकिन उसका खिंचाव शिथिल पड़ता जा रहा था। महेंद्र ने पहली बार ध्यान से उसकी ओर देखा। प्रमिला की आंखें ऐंची हो रही थीं और वह बेसुध सी बराबर बुदबुदाए जा रही थी। मत जाओ ना, मत जाओ ना, डॉट डॉट। महेंद्र को लगा जैसे उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ने लगा है। तभी पप्पू के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह आंगन के पार घर की सीढ़ियों के पास खड़ा चीख चीख कर रोए जा रहा था। महेंद्र ठिठक गया। पप्पू की ओर देखते समय उसकी नज़र फिर एक बार पड़ोसिन पर पड़ी, जो अब छज्जे पर आ गई थी और दोनों कोहनियाँ छज्जे की दीवार पर रखे उसकी ओर देखे जा रही थी। महेंद्र स्थिति के प्रति सजग हो गया और उसी वक्त अपने बाजू से प्रमिला के कंधों को सहारा देकर फीकी से सचेष्ट मुस्कुराहट के साथ उसे घर की ओर ले जाने लगा। अच्छी बात है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलो अंदर चलो। आंगन पार करके दोनों सीढ़ियों के पास आ गए। प्रमिला अभी भी कुछ पृष्ठ संख्या 66 बुदबुदाए जा रही थी, पर उन दोनों को लौटते देखकर पप्पू सहम कर चुप हो गया था और उनके पीछे पीछे घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। इसका नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, महेंद्र ने दांत पीस कर कहा और झटके से प्रमिला को सोफा कुर्सी के पास छोड़ते हुए अपने कमरे में चला गया।